नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक घरों के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से अमान्य किए गए कैडेटों के पुनर्स्थापन को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पहली बार 2 गुर्दों का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान अगले महीने की 19 तारीख को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्य में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता है। मतदान के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.5 करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट देने वाले 1.82 करोड़ मतदाता होंगे। श्री कुमार ने बताया कि आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। श्री राजीव कुमार ने कहा कि बहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बाधाकारी चुनौतियों से निपटने के सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुबल पर निगरानी रखने के लिए मतदान के दिन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनावों में खून खराबा और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और यदि कहीं हिंसा हुई तो आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। श्री कुमार ने बताया कि संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि शराब, नकदी, मादक पदार्थों और अन्य प्रकार की प्रलोभनकारी वस्तुओं को बांटने जाने पर नियंत्रण रखे। उन्होंने कहा कि आयोग ने नकदी के हस्तांतरण पर भी कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव तंत्र को कचरा प्रबंधन, कागज के कम से कम उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक घरों के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश के सभी हिस्सों से पंजीकरण हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक घरों के पंजीकरण किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना से ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होने के साथ घरों के बिजली खर्च में भी व्यापक कटौती होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल एक बेहतर धरती के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने लोगों से इस योजना के तहत यथाशीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया। पंजीकरण के लिए वेबसाइट का पता है pmsuryaghar.gov.in। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से अमान्य किए गए कैडेटों के पुनर्स्थापन को स्वीकृति दे दी है। प्रभावित कैडेटों के माता पिता कई दशक से पुनर्स्थापन सुविधा की मांग कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रतिवर्ष सैन्य एकेडमियों में युवा कैडेटों को शैक्षिक और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में उनके नियुक्ति होता है। नियमों के अनुसार ऐसे कैडेट को कमीशन प्राप्त करने के बाद ही अधिकारी माना जाता है, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कुछ कैडेट को चिकित्सा आधार पर अमान्य कर दिया जाता है। एक अन्य फैसले में रक्षा मंत्री ने अवकाश प्राप्त सैन्य कल्याण विभाग को पुनर्स्थापन महानिदेशालय की योजनाओं के लाभ देने की अनुमति भी प्रदान की है। इससे उन 500 कैडेटों को मदद मिल सकेगी जिन्हें चिकित्सा आधार पर इन योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन की अनदेखी के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के विरुद्ध दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें आज जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 की अवमानना की थी। यह धारा व्यक्ति या एजेंट द्वारा कानूनी आदेश की अवहेलना से संबंधित है। श्री केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की इन शिकायतों के बाद अदालत के समक्ष पेश होना पड़ा कि आम आदमी प्रमुख निदेशालय के समन की अनदेखी कर रहे हैं। निदेशालय ने अदालत को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जारी 8 समन की अनदेखी की है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासीन मलिक गुट पर प्रतिबंध 5 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह गुट जम्मू कश्मीर में अलगवाद और आतंकी कारगुजारियों में लिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों के साथ कानून सख्ती से निपटेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग को भी अगले 5 वर्ष के लिए अवैध संगठन घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन भी आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में अलगवाद को बढ़ावा देकर भारत की अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों और संगठनों से कड़ाई से निपटेगी। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पहली बार 2 गुर्दों का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। इसके लिए दोनों गुर्दे 78 वर्ष की एक महिला ने दिए, जिसे सिर की गंभीर चोट के साथ एम्स में भर्ती किया गया था। महिला को मृत घोषित करने के बाद उनके परिवार ने अंगदान पर सहमति व्यक्त की थी। एम्स के अनुसार अंगदाता महिला एम्स की दूसरी सबसे वयोवृद्ध अंगदाता थी। उनके गुर्दे 51 वर्ष की एक महिला में प्रत्यारोपित किए गए, जो डायलिसिस पर थी। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। श्री सहगल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था। नवनीत कुमार सहगल के नाम पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व वाली चयन समिति की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री सहगल की नियुक्ति की है। सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कल 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा FLNAT कराएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि करीब 37 लाख शिक्षार्थी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आकलन परीक्षा में शामिल होंगे। FLNAT में भाग लेने वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। आकलन परीक्षा में 3 विषय पाठन, लेखन और संख्या ज्ञान शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि ये परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर सभी शिक्षार्थियों के क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इस बार चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा FLNAT के माध्यम से 100% साक्षरता घोषित कर सकते हैं। यह परीक्षा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे अध्यापन शिक्षण सत्र के प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों को आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल प्राप्त करने के संबंध में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा में हमले की मंजूरी दे दी है। राफा में कई विस्थापित लोग रह रहे हैं। श्री नेतन्याहू का यह फैसला हमास द्वारा गाजा में संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थों और अमरीका को दिए गए प्रस्ताव के बाद आया है। हमास ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले इजरायली बंधकों को रिहा करने का प्रस्ताव दिया था। इनमें से 100 कैदियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। श्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि हमास का संघर्ष विराम प्रस्ताव अवास्तविक मांगों पर आधारित है। हालांकि श्री नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर संभावित समझौते पर बातचीत के लिए अपना शिष्टमंडल कतर भेजा है, जिसे संघर्ष विराम की उम्मीद जगी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।